एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करता है ज्ञान गोष्ठी, दुनिया के बेहतरीन विचारों और विचारकों का सार, अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। नमस्कार, आज हम एक ऐसी किताब पर बात करने वाले हैं जिसने न सिर्फ बास्केटबॉल की दुनिया में बल्कि शायद स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में भी काफी हलचल मचाई थी। किताब है सैम स्मिथ की द जॉर्डन रूल्स।
हाँ, 1992 में आई थी ये किताब और आते ही इसने सनसनी फैला दी थी। ये शिकागो बुल्स के उस खास सीजन पर है 1990-91, जब उन्होंने अपनी पहली एनबीए चैंपियनशिप जीती।
और जाहिर है सेंटर में है माइकल जॉर्डन, बास्केटबॉल के भगवान, एक ग्लोबल आइकॉन।
बिल्कुल, लेकिन ये किताब सिर्फ उनकी महानता का गुणगान नहीं करती, असल में ये उस बनी बनाई सार्वजनिक छवि को तोड़ती है जॉर्डन की थी।
हाँ, वही परफेक्ट हीरो वाली इमेज। किताब ने क्या अलग दिखाया?
सैम स्मिथ उस समय शिकागो ट्रिब्यून के लिए बुल्स को कवर करते थे, तो उनकी पहुंच लॉकर रूम तक थी। उन्होंने जॉर्डन की जो जीत की जिद थी, जो निर्ममता थी, और टीम के साथियों के साथ उनके जो रिश्ते थे, काफी जटिल थे।
अच्छा।
हाँ, कभी कभी तनावपूर्ण भी। किताब उन सबको सामने लेकर आई। तो ये सिर्फ खेल की कहानी नहीं है, ये लीडरशिप पर, पावर पर, और मतलब असाधारण सफलता के साथ आने वाली मुश्किलों पर भी एक स्टडी है।
इसने तो उस जमाने में काफी विवाद खड़ा किया होगा।
बहुत। इसने एक तरह से बेबाक स्पोर्ट्स जर्नलिज्म का स्टैंडर्ड ही सेट कर दिया।
तो चलें फिर उस 1990-91 सीजन की कहानी में। देखते हैं कैसे बुल्स लगातार हारने वाली टीम से चैंपियन बनी और जॉर्डन की इस तथाकथित परफेक्ट इमेज में क्या कुछ सामने आया।
जरूर। कहानी की शुरुआत थोड़ी निराशा वाली है। उस सीजन से ठीक पहले बुल्स लगातार 3 साल प्लेऑफ में हारे थे,
और वो भी अपने सबसे बड़े दुश्मन डिट्रॉयट पिस्टन्स से।
बिल्कुल, पिस्टन्स जिन्हें बैड बॉयज भी कहते थे, बहुत फिजिकल टीम थी, बहुत आक्रामक, और उन्होंने जॉर्डन को रोकने का एक खास प्लान बनाया हुआ था।
वही द जॉर्डन रूल्स।
हाँ, वही, वो खुद ही से द जॉर्डन रूल्स कहते थे।
सुनने में भारी लगता है, क्या था ये असल में, मतलब कैसे रोकते थे वो जॉर्डन को?
सीधा सा फंडा था। जैसे ही जॉर्डन के पास बॉल आती, 2 या 3 खिलाड़ी उन पर टूट पड़ते थे, फिजिकली रोकते थे, धक्का मुक्की करते थे, कोशिश होती थी कि वो बास्केट तक पहुंच ही ना पाए।
और ये काम कर रहा था?
हाँ बिल्कुल। जॉर्डन भले ही व्यक्तिगत रिकॉर्ड बना रहे थे, स्कोरिंग में टॉप पर थे, लेकिन टीम हार रही थी। और इसका असर टीम के मनोबल पर बहुत बुरा पड़ रहा था।
बोझ तो हो गई पिछली हारों का,
बहुत ज्यादा। इसी माहौल में टीम में 2 बड़े बदलाव हुए। हेड कोच बने फिल जैक्सन और उनके साथ आए सहायक कोच टेक्स विंटर।
फिल जैक्सन और टेक्स विंटर। टेक्स विंटर का नाम तो ट्रायंगल ऑफेंस के साथ जुड़ा है ना?
एकदम सही। टेक्स विंटर को ट्रायंगल ऑफेंस का गुरु माना जाता है, और फिल जैक्सन इसे बुल्स में लागू करने के लिए बहुत दृढ़ थे।
ये ट्रायंगल ऑफेंस थोड़ा समझाएंगे, ये क्या था और जॉर्डन जैसे स्टार को इससे दिक्कत क्यों हुई?
देखिए, ट्रायंगल ऑफेंस एक सिस्टम है, थोड़ा जटिल है, लेकिन इसमें बॉल लगातार मूव करती है, खिलाड़ी अपनी पोजीशन बदलते रहते हैं। आइडिया ये है कि 5 खिलाड़ियों को स्कोर करने के मौके मिलें।
अच्छा, मतलब ये वैसा नहीं था कि बस जॉर्डन को बॉल दो और बाकी लोग देखो।
नहीं, बिल्कुल नहीं। ये जॉर्डन के आइसोलेशन प्ले से एकदम अलग था, जहां अक्सर वो अकेले ही 5 डिफेंडरों से भिड़ते थे।
तो जाहिर है जॉर्डन को ये पसंद नहीं आया होगा, उन्हें लगा होगा कि ये उनकी आजादी छीन रहा है।
हाँ, किताब यही बताती है। जॉर्डन ने शुरू में इसका बहुत विरोध किया, उन्हें लगता था ये उनकी प्रतिभा पर रोक है, उन्हें बॉल छोड़ने में, सिस्टम पर भरोसा करने में हिचक होती थी।
ये कुछ वैसा ही है जैसा कॉलेज में डीन स्मिथ के सिस्टम को लेकर उनका रवैया था शुरू में।
कुछ हद तक हाँ, उन्हें अपने तरीके से खेलने की आदत थी, तो एक तरफ कोच का सिस्टम पर जोर, दूसरी तरफ टीम के सबसे बड़े स्टार का विरोध। माहौल तो बिगड़ा होगा।
हाँ, किताब में सीजन के बीच के हिस्से का जिक्र है, लगता है काफी उथल पुथल थी।
उथल पुथल शायद छोटा शब्द है, किताब के हिसाब से तो लॉकर रूम में दरारें पड़ गई थीं, खिलाड़ियों में आपस में काफी तनाव था।
और इसमें जॉर्डन के लीडरशिप स्टाइल का भी हाथ था, वो कैसे देख लीडर के तौर पर?
बेहद कॉम्पिटिटिव, हर किसी से परफेक्शन चाहते थे, और अगर कोई खरा ना उतरे तो काफी कठोर हो जाते थे, कभी कभी अपमानजनक भी।
किताब में कुछ उदाहरण है जो चौंकाते हैं, जैसे टीम के जनरल मैनेजर जेरी क्रॉस का मजाक उड़ाना।
हाँ, पब्लिकली उनके वजन पर, उनके कद पर, उन्हें क्रम्स जैसा निकनेम देना, ये सब चलता था।
और खिलाड़ियों के साथ?
अगर कोई खिलाड़ी गेम में गलती करता तो जॉर्डन कई बार उसे पास देना ही बंद कर देते थे, बिल्कुल इग्नोर। प्रैक्टिस में तो विल परड्यू, जो रिजर्व सेंटर थे, उनको मुक्का तक मार दिया था।
बाप रे, और बिल कार्टराइट जो पलुभवी सेंटर थे उनके साथ भी कुछ था?
हाँ, उन्हें लगातार मेडिकल बिल कहकर चिढ़ाते थे और दूसरे खिलाड़ियों से कहते थे कि कार्टराइट को पास मत दो।
ये कैसा टफ लव था।
जॉर्डन का यही मानना था कि दबाव और टकराव से ही खिलाड़ी मजबूत बनते हैं, कमजोर बाहर हो जाते हैं।
पर इसका असर क्या होता था टीम पर? सब प्रेरित होते थे या
नहीं? मिला जुला असर था। शायद कुछ लोग इससे मोटिवेट होते हों, पर ज्यादातर खिलाड़ी किताब के मुताबिक डरा हुआ और अलग थलग महसूस करते थे।
ऐसे में टीम को साथ रखना तो फिल जैक्सन के लिए बड़ी चुनौती रही होगी।
बिल्कुल, जैक्सन सिर्फ कोच नहीं थे, वो एक तरह के मनोवैज्ञानिक भी थे। किताब उन्हें दिखाती है कि कैसे वो शांति से इन झगड़ों को सुलझाते थे, टीम मीटिंग्स करते थे ताकि खिलाड़ी अपनी बात कह सकें। उन्होंने जॉर्डन के गुस्से को दबाने की कोशिश नहीं की, बल्कि उसे चैनलाइज करने का रास्ता निकाला।
क्या टीम इस माहौल में ढल पाई, मतलब जॉर्डन के इस रवैये के साथ खेलना सीख लिया?
धीरे धीरे, हाँ। खिलाड़ियों ने जॉर्डन की आलोचना सहना सीखा और अपना बेस्ट देना जारी रखा। और एक बहुत जरूरी बात हुई, स्कॉटी पिपिन जॉर्डन की छाया से निकलकर एक स्टार बनकर उभरे।
हाँ, पिपिन का उदय बहुत महत्वपूर्ण था।
बहुत। टीम को एक दूसरा भरोसेमंद स्कोरर मिला जो ट्रायंगल ऑफेंस के लिए भी जरूरी था।
तो इतनी अंदरूनी खींचतान के बावजूद टीम ने सीजन के आखिर में लय पकड़ ली। 61 जीत, फ्रेंचाइजी रिकॉर्ड, कॉन्फ्रेंस में टॉप सीड।
हाँ, रेगुलर सीजन तो शानदार रहा, पर असली परीक्षा प्लेऑफ में थी और खासकर
पिस्टन्स के खिलाफ।
बिल्कुल, पहले दो राउंड जीतने के बाद ईस्टर्न कॉन्फ्रेंस फाइनल में फिर वही दुश्मन सामने था, डिट्रॉइट पिस्टन्स। 3 साल की हार का साया।
इस बार क्या अलग था?
इस बार बुल्स अलग थे। वो अंदरूनी झगड़ों से तपकर निकले थे, शायद ज्यादा मजबूत थे, और ट्रायंगल ऑफेंस काम कर रहा था।
और नतीजा, इतिहास बदल गया
पूरी तरह। बुल्स ने पिस्टन्स को 4-0 से हराया, स्वीप।
4-0, ये तो अविश्वसनीय था।
ये सिर्फ एक सीरीज जीत नहीं थी, ये एक मनोवैज्ञानिक जीत थी। सालों का डर खत्म हो गया था, जॉर्डन रूल्स टूट चुके थे।
और वो पिस्टन्स का आखिर में बिना हाथ मिलाए कोर्ट से चले जाना।
हाँ, वो भी एक बड़ा पल था। गेम 4 के अंत में जब हार तय हो गई तो इसाया थॉमस समेत पिस्टन्स के कई बड़े खिलाड़ी बिना हाथ मिलाए ही चले गए, जैसे सत्ता का हस्तांतरण हो रहा हो।
वाह, इस जीत ने तो फाइनल के लिए गजब का आत्मविश्वास दिया होगा। फाइनल में थे मैजिक जॉनसन और लेकर्स।
हाँ, लेकर्स एक महान टीम थी और बुल्स ने पहला गेम घर पर ही गंवा दिया।
ओहो, फिर से शक?
शायद एक पल के लिए आया हो, लेकिन ये टीम अब अलग थी। उन्होंने जबरदस्त वापसी की और अगले 4 गेम लगातार जीतकर अपनी पहली NBA चैंपियनशिप जीत ली।
उस फाइनल सीरीज के भी कुछ आइकॉनिक पल हैं। जॉर्डन का वो हवा में हाथ बदलने वाला लेअप।
हाँ, वो तो कमाली था, उनकी व्यक्तिगत प्रतिभा का सबूत।
लेकिन किताब के नजरिए से शायद एक और पल ज्यादा महत्वपूर्ण था, गेम 5 का अंत।
बिल्कुल, गेम 5 का वो आखिरी मिनट। स्कोर बराबर था, बॉल बुल्स के पास, जॉर्डन के हाथ में।
पुराने जॉर्डन शायद खुद ही शॉट लेते, चाहे कितना भी मुश्किल होता।
हाँ, उनकी आदत यही थी, लेकिन इस बार उन्होंने डिफेंस को अपनी तरफ खींचा और बॉल पास कर दी जॉन पैक्सन को, जो कोने में खड़े थे।
और पैक्सन ने शॉट मार दिया।
हाँ, वो चैंपियनशिप जिताने वाला शॉट था। ये पल जॉर्डन के बदलाव का प्रतीक था।
अकेले हीरो से टीम लीडर बनने का सफर, ट्रायंगल ऑफेंस की जीत।
बिल्कुल सही, ये दिखाता था कि उन्होंने आखिरकार सिस्टम पर, अपने साथियों पर भरोसा करना सीख लिया था। और फिर वो तस्वीरें, लॉकर रूम में ट्रॉफी पकड़कर रोते हुए जॉर्डन की।
हाँ, वो बहुत इमोशनल थी।
किताब बताती है वो सिर्फ खुशी के आंसू नहीं थे, वो एक बेहद मुश्किल, थका देने वाले साल के बाद मिली राहत के आंसू थे, गहरी राहत।
चलिए थोड़ा और गहराई जाते हैं। जॉर्डन का मूल दर्शन क्या था, उन्हें क्या चीज ड्राइव करती थी?
किताब के हिसाब से जॉर्डन के लिए जीत ही सब कुछ थी, और उसे पाने के लिए कोई भी तरीका सही था। उनका मानना था कि दबाव, टकराव, ये सब जरूरी हैं।
क्यों?
क्योंकि इससे असली खिलाड़ी का पता चलता है। कमजोर लोग पीछे रह जाते हैं। उनके लिए लोगों का पसंद करना उतना जरूरी नहीं था जितना उनसे डरना और उनका सम्मान करना।
और नाकामी, वो तो उनके लिए मोटिवेशन थी, जैसे हाई स्कूल टीम से निकाले जाने वाला किस्सा।
हाँ, हर हार, हर आलोचना को वो फ्यूल के तरह इस्तेमाल करते थे। अपनी श्रेष्ठता साबित करने की एक जिद थी उनमें। सिर्फ बास्केटबॉल में नहीं, ताश के पत्तों में भी उन्हें जीतना होता था, हावी होना होता था।
और दूसरी तरफ फिल जैक्सन, उनका दर्शन तो काफी अलग लगता है, ज़ेन फिलॉसफी, टीम को इकोसिस्टम मानना।
बिल्कुल, जैक्सन ने जॉर्डन की आग को बुझाने की कोशिश नहीं की, उन्होंने बस उसे कंट्रोल करने के लिए, टीम के भले के लिए इस्तेमाल करने का एक ढांचा बनाया, वही ट्रायंगल ऑफेंस। वो संतुलन और माइंडफुलनेस पर जोर देते थे,
एक तरह से वो जॉर्डन की इंटेंसिटी को बैलेंस करते थे।
हाँ बिल्कुल, और टीम के बाकी लोग, पिपिन अपनी पहचान बनाना चाहते थे, जेरी क्रॉस शायद खुद को साबित करना चाहते थे जॉर्डन की बातों के बाद।
हाँ, हर किसी की अपनी कहानी, अपनी प्रेरणा थी। पिपिन को जॉर्डन की परछाई से निकलना था, क्रॉस को शायद सम्मान चाहिए था, और जैक्सन के लिए तो ये चुनौती प्रेरणा थी कि इस मुश्किल ग्रुप को कैसे चैंपियन बनाया जाए। किताब ये भी दिखाती है कि टीम ने मुश्किलों का सामना करना कैसे सीखा, खासकर पिस्टन से हार के बाद।
उन हारों ने उन्हें मजबूर किया, उन्हें समझ आया कि सिर्फ जॉर्डन के भरोसे या सिर्फ आक्रामकता से काम नहीं चलेगा, रणनीति बदलनी होगी, यानी ट्रायंगल को अपनाना होगा और मानसिक रूप से भी मजबूत होना होगा। खिलाड़ियों ने जॉर्डन की आलोचना झेलना सीखा।
तो असफलता एक तरह से टीचर बन गई।
हाँ, सबसे बड़ी टीचर।
अगर उस पूरे 1990-99 सीजन के तीन सबसे अहम मोड़ चुनने हो तो वो कौन से होंगे?
मेरे ख्याल से पहला तो ट्रायंगल ऑफेंस का पूरी तरह लागू होना और जॉर्डन का उसे आखिरकार अपना लेना। ये आसान नहीं था, उनके ईगो को ठेस पहुंची, पर इसने बुल्स को बहुत खतरनाक टीम बना दिया
और इसने जॉर्डन को भी बदला।
हाँ, उन्हें सिर्फ स्कोरर से लीडर बनने में मदद की। ये सामरिक बदलाव चैंपियनशिप के लिए जरूरी था।
ठीक है, दूसरा मोड़।
दूसरा मनोवैज्ञानिक, डिट्रॉइट पिस्टन्स को प्लेऑफ में 4-0 से हराना। वो सिर्फ एक सीरीज जीत नहीं थी, वो एक भूत को भगाना था। सालों का डर खत्म हुआ, उससे जो आत्मविश्वास मिला वो फाइनल के लिए बहुत जरूरी था।
और तीसरा, शायद वो एक पल।
हाँ, तीसरा वो फाइनल का जॉन पैक्सटन वाला पास। जैसा हमने कहा, वो जॉर्डन के विकास का प्रतीक था। उस एक पल में दिखा कि उन्होंने सिस्टम पर, साथी पर भरोसा करना सीख लिया था। वो अपनी प्रवृत्ति के खिलाफ गए। यो उस पूरी मुश्किल यात्रा का जो किताब बताती है, एक विजयी क्लाइमैक्स था।
ये तीनों मोड़ वाकई कहानी को दिशा देते हैं। अब थोड़ा हट के सोचते हैं, इस कहानी से आज हम क्या सीख सकते हैं? ये सिर्फ बास्केटबॉल की बात तो है नहीं।
बिल्कुल नहीं, एक बड़ा सबक तो महानता की कीमत है। असाधारण सफलता के लिए क्या क्या छोड़ना पड़ता है, आराम, शायद लोकप्रियता भी, रिश्ते। जॉर्डन की महानता उनके मुश्किल स्वभाव से कहीं ना कहीं जुड़ी थी।
क्या महान बनने के लिए मुश्किल होना जरूरी है?
ये सवाल उठता है।
हाँ, ये किताब ये सवाल जरूर उठाती है। दूसरा सबक है व्यक्तिगत प्रतिभा और टीम वर्क का संतुलन,
कि कैसे एक अच्छा सिस्टम महान टैलेंट को और निखार सकता है।
बिल्कुल, पर उसके लिए अहंकार को थोड़ा पीछे रखना पड़ता है। जॉर्डन ने जब ट्रायंगल को अपनाया तो वो और बड़े खिलाड़ी बने।
लीडरशिप के भी अलग अलग पहलू दिखे। जॉर्डन का डराने वाला अंदाज बनाम जैक्सन का शांत तरीका।
हाँ, ये दिखाता है कि लीडरशिप कई तरह की हो सकती है। शायद उस टीम को उस वक्त जॉर्डन की इंटेंसिटी की जरूरत थी, पर जैक्सन के संतुलन के बिना वो कामयाब नहीं हो पाते। असफलता से सीखना भी एक बड़ी थीम है।
बहुत बड़ी। पिस्टन्स से हारने ही बुल्स को बदलने पर मजबूर किया, और ये भी कि संघर्ष हमेशा बुरा नहीं होता। बुल्स के लॉकर रूम में शांति नहीं थी, पर उस तनाव ने शायद उन्हें और प्रतिस्पर्धी बनाया।
और आखिर में पब्लिक इमेज बनाम असलियत।
हाँ, कि हमारे हीरो भी इंसान होते हैं, उनमें भी कमियां होती हैं, विरोधाभास होते हैं। जॉर्डन की जो चमकती छवि थी, उसके पीछे एक बहुत जटिल इंसान था।
तो इस पूरी बातचीत के बाद अगर तीन खास बातें निकालनी हो, एक भावनात्मक, एक बौद्धिक और एक सार्वभौमिक, तो वो क्या होंगे?
भावनात्मक अंतर्दृष्टि, इमोशनल इनसाइट, शायद ये होगी। असाधारण उपलब्धि अक्सर अकेलेपन के साथ आती है, और खुद से और दूसरों से परफेक्शन की मांग करने की एक मनोवैज्ञानिक कीमत होती है। जॉर्डन की कहानी उस कीमत को दिखाती है।
ठीक है, और बौद्धिक रूप से?
बौद्धिक अंतर्दृष्टि ये है, व्यक्तिगत चमक और टीम की रणनीति का सही मिश्रण अद्भुत नतीजे दे सकता है। जब जॉर्डन जैसी प्रतिभा ने ट्रायंगल जैसे सिस्टम को अपनाया तो दोनों का फायदा हुआ। सिस्टम प्रतिभा को सही दिशा दे सकता है, उसे दबाता नहीं।
और एक सार्वभौमिक सबक जो सबके काम आए?
सार्वभौमिक अंतर्दृष्टि शायद ये है, लगातार तैयारी, जबरदस्त मानसिक मजबूती और सुधार करते रहने की इच्छा से मुश्किल से मुश्किल हालात को भी आखिरकार अपने हक में मोड़ा जा सकता है। बुल्स ने यही किया, हार से सीखा, बदलें और जीते।
बिल्कुल, द जॉर्डन रूल्स वाकई सिर्फ एक स्पोर्ट्स बुक से कहीं ज्यादा है। ये लीडरशिप, मनोविज्ञान और जीतने की जिद की एक क्लासिक कहानी है, और सोचने पर मजबूर करती है कि हम सब जीत के लिए क्या कीमत चुकाने को तैयार हैं। फिर मिलेंगे अगले अंक में एक नई विश्वविख्यात व्यक्ति, एक नई किताब और एक नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।